रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी। सूरज में उजाला तुम ही से भगवन, ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो कौन सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। जो कहो वो सुनो तो, प्रभु जी हमरी है विनती, दुख जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही।
नमो नमो अरिहंतानं, नमो नमो सिरिसेतानं, नमो नमो आयिर्यानं, नमो नमो वज्रायानं, नमो लोहे सविषाहूनं, पंच परमेश की भगवान की। बोलिए 1008 श्री भगवान नैमना स्वामी, बोलिए 108 श्री परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, बोलिए 108 श्री गुरुवर नैमी सागर महाराज की, 우리 익사신 문의벌 청원사회 만화 जाओ ना उधर जाओ ना उधर दुनिया जा रही है जाओ ना उधर दुनिया जा रही है जाने दो जाए जाने दो जो जाए तुम क्यों जा रही हो जाने दो जो जा रहे हैं तुम क्यों जा रही हो कहते हैं मत करो संकल्प विकल्प भाई मत करो संकल्प विकल्प भाई देखो ना पर को इसमें है भलाई देखो ना पर को इसमें है भलाई संसार में न सुख किंचित भी कहीं है संसार में न सुख किंचित भी कहीं नहीं है संसार को न देखो भाई भलाई इसमें ही है संसार को न देखो तो भलाई है कहाँ कहाँ हो रहा हो अगर देखो तो बड़ो दुख है मंदिर में जाओ तो दुख है कहूँ नाय मां जाओ तो दुख है ऐसे जहां जे जा रहा हो के पीछे न लगो अपने शांति से काम करो कहते हैं जीवन मिला है कर लो अपनी भलाई जीवन मिला है कर लो अपनी भलाई और आखिर में नहीं फिर पछताओगे भाई अगर भलाई नहीं करी पछताना पड़ेगा बहुत सोचने की बात है कहाँ क्या होता है क्या हो रहा है और अपनी अपनी मान कसाय में आदमी भूल के और भटक रहा है क्या किया जाए ये मान कसाय है उसका उदाहरण देते हैं आप एक दयालु मेघरथ राजा दुख दुखियों के हरते थे एक दयालु मेघरथ राजा दुख दुखियों का हरते थे यही यह है कहानी बिल्कुल सच्ची न्याय सभा में करती थी राजा मेघरथ थे और दुखियों का किस प्रकार दुख हरते थे उस बात की चर्चा कर रहे एक दिन सोने के झूले में बैठा राजा झूल रहा था राजा मेघरथ एक दिन सोने में बैठ सोने के झूले में बैठा झूल रहा था सामने एक गोखले में से बैठा एक कबूतर खेल रहा था सामने देखता कहाँ है झूला कहाँ बंधा होगा कौन कौन बात बताएं अपन बगीचा में बंधो तो कहाँ बंधो तो और भी देख रहे थे कि कोई वृक्ष की कोटर में से एक कबूतर वहीं खेलता था कबूतर खेलता था देखकर भोलापन पक्षी का राजा सोच रहा मन में पक्षी का भोलापन देखकर राजा सोच रहा कि देखो इसके लिए जिस प्रकार बालक के लिए कोई प्रकार का राग दोष नहीं होता कहते बालापन सबसे भला जाने राग रंग और जवानी में पन सबसे बड़ा जहां देखो जहां जहां दुख है राग दोष है तो
ऐसा हुआ है पक्षी उसके लिए कोई चिंता नहीं, ना भूख की ना प्यास की है? राजा बड़ा खुशी होता है, कोई चिंता कोई भी दुख कोई खुशी भी कोई फिक्र नहीं। अपन तो जीवन दुखमय है, राजा कह रहा का अपना जीवन तो दुखमय है, जहां देखो कहूं प्रजा का दुख है, कहूं राजपुत्र का दुख है, कहूं संपत्ति का दुख है, कहूं राजा का दुख है, कोई चढ़ाई ना कर दे रहे हैं। निर्जन चिंता ही चिंता। एक दयालु में ऐसी बात है कि दयालु जो है, जो पर का दुख हरने के लिए और अपना भी शरीर दान कर सकता है, वो ही दयालु है। कहते हैं इतने में क्या होता है, इतने में क्या होता है कि एक आवाज भयंकर आती है, एक आवाज भयंकर आती है और वह कबूतर घबराता हुआ कांपता हुआ भागता है, उसके पीछे एक बाज दौड़ती है उस कबूतर के लिए पकड़ने के लिए एक बाज दौड़ती है। जिस प्रकार की महाधनमान पुरुष कोई प्रकार से कितना ही भी सुखी हो, वो घर में कोई बीमार हो जाए या कोई डाकेबाजे आ जाए, उसको कितनी वेदना कितना दुख होता है। इस प्रकार वो खेल तो रहा था, लेकिन जब बाज दौड़ी तो उसको अपने प्राणों की रक्षा के लिए बहुत दुख हुआ, कांपता और कहां जाए। पर क्या देखता है कि राजा ने दौड़कर उस कबूतर के लिए उठा लिया, उस कबूतर को राजा ने उठा लिया। बाज कहने लगा, बाज कहने लगा कि आप नरपति हैं, प्रजापाल हैं, सबके रक्षक। आप प्रजापाल हैं, नरपति हैं, सबके रक्षक हैं, आपसे मेरी यही विनय है कि मैं भी 3 दिन का भूखा हूं, मैं भी 3 दिन का भूखा हूं। आपने मेरा भोजन छीन कर मेरे लिए पिया देने का उपयोग किया, आप न्याय कीजिए। राजा ने सोचा, एक तरफ तो कबूतर की जान बचाने का दया के भाव, दूसरी तरफ विचार करते हैं कि ये भूखों मर रहा है, अब क्या करें, इसको छोड़ते हैं तो इसकी हत्या होती है और इसको नहीं छोड़ते तो ये भूखों कहता हम भूखे हैं, हम भी पत्थर में मुंह मार कर मर जाएंगे, अब रक्षा कीजिए आप, न्याय बन से न्याय कीजिए, कौन सा न्याय करेंगे आप बोलिए। राजा विचार करता है, अगर मैं आज न्याय नहीं करता हूं तो मेरा आप कीर्ति का झंडा फैल जाएगा। राजा ने कहा, हे बाज, तेरी भूख में मिटा सकता हूं। अब राजा सोच रहा है कि इसके लिए मैं कोई दूसरे जीव का मांस मंगा के दूं तो वो भी तो जीव मरा होगा, वो भी तो हिंसा हुई, अब क्या करूं। बाज कह रहा है कि मैं बिना मांस का भोजन नहीं करता, मैं और कुछ नहीं, मांस ही मांस ही। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने अपनी कटार निकाल कर अपनी जान का मांस काट कर देने लगा तो बाज कहने लगा कि हो राजन, जितना इसका कबूतर का वजन है मैं उतना तौल कर लूंगा। राजा ने कहा अच्छा। राजा ने तराजू मंगाया, तराजू पे अपनी जान का मांस काट काट रखने लगा। राजा की परीक्षा हो रही थी, ना वो बाज था ना वो कबूतर था। राजा की परीक्षा हो रही थी कि तुम कितने दयालु हो, तुम कितने न्यायमंत हो। राजा कितना ही मांस चढ़ाता जाता था लेकिन पलवा नहीं गिरता था। फिर राजा ने हाथों का मांस काटना शुरू कर दिया। जब हाथों का मांस काटना शुरू कर दिया तब भी पलवा नहीं गिरा, तब राजा ने अपने सिर के ऊपर कटार मारना चाही। देव ने फौरन हाथ पकड़ लिया, देव ने फौरन हाथ पकड़ लिया। हे भाई, कहने का मतलब ये है कि जो परखों दुख जय सुख माने उसे प्रतित मानो। परखों प्रिया देखें हम सुखी बनो चाहें, हमों कभी सुख नहीं होगा। परखों भूखों मार के हम अपना पेट भरना चाहें, हमारा कभी पेट नहीं भरेगा। सुर्ग से देवों ने राजा के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी और जय जयकार होने लगा। ऐसा न्यायवंत राजा धन्य है जिसने दूसरे की हिंसा देख के कहीं का कोई मांस नहीं मंगाया और बाज का भी जान बचाने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ति न होने पर अपने शीश के लिए उतारने लगा। इस प्रकार उस राजा मेघरत्न ने दया करके और वो बाज भी बलायमान हो गई, कबूतर भी हो गया और देवों से सम्मानित हुआ राजा। कहते हैं न्यायवंत ऐसे होते हैं, ऐसे दयावंत होते हैं। हमारे अंदर दया नहीं, हम बहुत उत्कृष्ट हैं, हम कहने सुनने में हम बहुत दयालु बनते हैं, हम बहुत दानी बनते हैं, हम धनपति भी बनते हैं, पर हमारे अंदर जो दया होना चाहिए वह दया जीव के प्रति नहीं है। इसलिए हमारे लिए दया करना योग्य है, यही साथ में जाएगी। उस राजा मेघरत्न के दृष्टांत शास्त्रों में आ गए, कब राजा मेघरत्न हुआ होगा आज उसकी चर्चा अपनी सभा में हो रही। इसलिए हमारे कहने का मतलब यह है हर जीव पर दया करना, जिसके पास दया नहीं है, जिसके पास दया नहीं वो इंसान नहीं है, जिसके पास दया है वो इंसान नहीं वो भगवान है। इसलिए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
सागर सुदूर इत्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी ये पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयान सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं ते सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंड कुंड स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, सभी लोग पिछले कई दिनों से एक ही बात पर विचार कर रहे हैं और शायद जीवन भर भी इस बात पर विचार करते रहे तो भी बात पूरी नहीं होगी। वो तभी पूरी होगी जब हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। रोज अपने जीवन को अच्छा बनाने का एक सूत्र यदि हमारे जीवन में हम शामिल करते जाएं तो संभव है कि हमारा जीवन पूरी तरह से अच्छा बने। हम सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार ही नहीं कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों एक प्रयोग भी शुरू किया है। आचार्य भगवंतों ने श्रावक के जीवन में उस प्रयोग को शामिल इसलिए किया है ताकि वो जैसे अच्छे जीवन को चाहता है वैसा अच्छा जीवन बना सके। साधु का जीवन निरंतर अच्छाइयों की तरफ है और साधु के जीवन से जो श्रावक को शिक्षा मिलनी चाहिए वो तभी मिलेगी जबकि वो एक आध दो दिन साधु के जैसा जीवन बिताने का प्रयास करे। साधु की विशेषता है कि वो अपने जीवन को समतापूर्वक जीता है, तो श्रावक का भी कर्तव्य है कि वो कुछ क्षण अपने जीवन में ऐसे व्यतीत करे जिसमें कि वो अपने समता भाव को बनाए रख सके। आचार्यों ने समता की परिभाषा बनाई है, वो अपन थोड़ा सा देखें क्या परिभाषा बनाई है। अब पुस्तक तो आपके पास है नहीं, आ जाएगी तब मेरे साथ पढ़ने का आप मजा लेंगे, लेकिन अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। रोज अपन ने दी एक छोटी सी बात एक गाथा या सूत्र के रूप में अपने जीवन में रखते जाएं तो अपन खुद आश्चर्य करेंगे कि अपने पास कितना बड़ा खजाना है विचारों का, और जब अवसर आए तब उस खजाने में से एक विचार निकाल करके और हम अपना लाभ कर सकते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार आचार्यों ने हमारे लिए गाथाएं और सूत्र रखे हैं वे तो मानो बच्चों की चॉकलेट के समान हैं। बच्चे चॉकलेट को एकदम नहीं खाते, वे उसको मुंह में रखे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चबाते हैं, फिर चूसते हैं, फिर मजा लेते हैं, है ना? ठीक ऐसा ही चॉकलेट की तरह। और ये भी गाथाएं अगर हम इस तरह अपने जीवन में उनको उनसे मैसेज लेने की कोशिश करें तो वे ऐसा ही मैसेज देती हैं। समभावो सामायम तण कंचन सत्तुमित्त विसोति निरविनिसंगम चित्तम उचियतय पवित्त पहाणम च। गाथा कठिन लग रही है लेकिन अर्थ बहुत आसान है। प्राकृत हमारी ओरिजिनल भाषा है, ये प्राकृत भाषा में है। कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि समता ही सामायिक है, इसका प्रयोग रोज करना चाहिए। जिन क्षणों में हम समता भाव रखते हैं वे क्षण हमारे सामायिक के हैं। और समता के मायने क्या है? समता के मायने हैं मैं अपने मन को ना एक्साइट होने देता हूं ना डिप्रेस होने देता हूं। मेरे सामने जो भी कंडीशन आती हैं, जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं, वे या तो मुझे हर्ष देकर के जाती हैं या कि विषाद देकर के जाती हैं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं उन परिस्थितियों में ना हर्षित होऊंगा ना विषाद करूंगा। स्वर्ण को देख करके मैं उसे अपने पास संभाल के रखने की चेष्टा नहीं करूंगा और पत्थरों को देख करके मैं उन्हें बाहर नहीं फेंकूंगा, दोनों को समान मानूंगा। थोड़ी देर सही, एकदम नहीं तो आप गड़बड़ में पड़ जाओ कि ये तो मामला गड़बड़ है, हम तो कल ही हीरे की अंगूठी खरीद के लाए थे और आप कह रहे हैं कि जैसे पत्थर को ट्रीट करते हैं वैसे उसको करें तो क्या हम कचरे फेंक दें क्या उसको? नहीं, ये नहीं कह, महत्व ना दें उन क्षणों में। कुछ क्षण जीवन के ऐसे हों जिनमें कि हम इन चीजों को समान रूप से देखें। असल में पत्थर तो दोनों हैं, वास्तविकता ये है, चाहे वो जैम स्टोन हो या ऑर्डिनरी स्टोन हो, दोनों स्टोन हैं, दोनों रॉक फॉर्मेशन है, दोनों के बनने की प्रोसीजर सेम है। लेकिन क्या करें, हमने एक को महत्व दिया है और एक को निग्लेक्ट कर दिया है। और ऐसा करके कोई हमने बहुत बड़ा काम किया हो ऐसा नहीं है, हमने खुद अपने लिए तकलीफ पैदा की है। किसी चीज को जब बहुत महत्व देते हैं और वो महत्वपूर्ण बन जाती है तब उस चीज के हमारे पास होने पर हमें सुख होने लगता है और उस चीज के अभाव में हमें खुद तकलीफ होने लगती है। देखो मजा, कागज के एक टुकड़े पर हम सील लगा देते हैं और मान लेते हैं कि 100 रुपए का है और है वो कागज का टुकड़ा। जिसे नहीं मालूम है उसे उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम अपने को जानकार मानते हैं और मानते हैं कि हमें पहचान है, हम जौहरी हैं, हम हीरे और पत्थर को पहचानते हैं। बताइएगा इस तरह के जौहरी होने से क्या लाभ मिला कि हम पत्थर और जैम स्टोन को दोनों को अलग अलग जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, हमें जानना चाहिए, लेकिन हर्ष विषाद करना ये तो कोई बहुत पारखी बना नहीं है, ये तो कोई बहुत कलाकार होना नहीं है। कलाकार तो वो है जो जानने के बाद दोनों में और समान रह पाता है। और दूसरी बात, किसी भी चीज को अपने साथ अटैच नहीं होने देता है, निस्संग रहता है। चीजें हमारे साथ अटैच नहीं होती हैं, एक्चुअली देखा जाए लगता तो यह है कि चीजें हमारे साथ अटैच हो जाती हैं, नहीं, चीजों के साथ हम अटैच हो जाते हैं। जैसे कि बाबा जी से एक व्यक्ति ने कहा था कि बाबा जी मैं क्या करूं, ये तो संसार छोड़ते ही नहीं है। उन्होंने कहा सुनो कल आना फुर्सत से, मैं बताऊंगा उपाय बताऊंगा। और फिर बाद में दूसरे दिन जब वो आया था तो उसके आते ही साथ और बाबा जी ने एक खंभे को पकड़ लिया जोर से और चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, ये खंभा मुझे छोड़ते ही नहीं है। तो वो कहने लगा कि हम तो सोच रहे थे कि बाबा जी होशियार होंगे हमसे ज्यादा, लेकिन ये तो और बुद्धू निकले और खुद अपने हाथ से खंभा पकड़े और हमसे कह रहे हैं कि बचाओ बचाओ, खंभे ने पकड़ लिया। तो बाबा जी से उसने कहा कि बाबा जी बिल्कुल समझदारी की बात है ये तो, और आप इतनी गैर समझदारी की बात कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिएगा ना उसको, वो खंभा थोड़ी आपको पकड़े। तो बोले सुनो कल जो तुम मेरे से पूछ रहे थे ना कि संसार मुझे पकड़े हुए है, कुछ उपाय बताओ। मुझे क्या बताना उपाय, तुम खुद जानते हो उपाय, तुम छोड़ दो वो तो छूटे ही हुआ, तुम पकड़े पकड़े फिरते हो। दुख का कारण हम अपने साथ खुद लिए हुए हैं। चीजों को हम इस तरह महत्व देकर के अपने लिए दुख कमाते हैं। और इतना ही नहीं, हम चीजों को अपने पास रख करके अपना स्टेटस ऊंचा समझने लगते हैं। जितनी चीजें मेरे पास हैं उतना बड़ा मैं हूं, मेरे मैं को बड़ा करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, और जब वे चीजें नहीं होती हैं तो मेरा मैं बहुत छोटा होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा हो गया। जबकि मैं ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं जो हूं वो हूं, लेकिन चीजें होने पर मैं बड़ा हो जाता हूं, चीजें निल हो जाएं तो मैं भी बिल्कुल निल हो जाता हूं।
इसको भी चीजों से और चीजों को महत्व दे करके अपने जीवन को मुश्किल में डाला है, अपने दुख का उपाय अपने हाथ से किया। एक और छोटा सा उदाहरण जिससे मालूम पड़े कि ये चीजें हमारे लिए हमने किस तरह दुख में कारण बनने में ये हमारे कैसे सहायक हो जाती हैं और कैसे हम भूल जाते हैं, हम क्यों नहीं उनके बीच समता रख पाते हैं। इतना ही तो करना है अपन को, चीजें सबके पास हैं। आज आप जाकर के मेरे कहने से कोई चीजों को फेंकने वाले भी नहीं है, ना मैं ऐसी कोई सलाह दूंगा आपको। कहां तक फेंकेंगे चीजें? संसार को फेंक देने से कोई संसार से मुक्त नहीं होता। संसार से तटस्थ हो जाने पर संसार वहीं रहा आता है और हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर पाता। सिर्फ इतनी सी टेक्निक सीखना है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सारी चीजें वहीं की वहीं रखी रहेंगी, हम भर उससे अलिप्त हो जाएं। ये विद्या कौन सिखाता है? ये सामायिक सिखाती है, अलिप्तता, निस्संग होना सिखाती है सामायिक। कुछ क्षणों के लिए, एक घंटे के लिए, जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं या कि अपना भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उतनी देर के लिए मेरी कोई चीज नहीं है, मेरी हो भी कैसे सकती है। मैं सब में से अपने लगाव को हटा लेता हूं, अब वो चीजें नहीं है मेरे लिए, होते हुए भी नहीं है। ये घड़ी मेरे सामने रखी, मैंने खरीदी नहीं है, मैंने खरीदी नहीं इसलिए कोई उठाकर ले जाएगा तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन जिसने खरीद के यहां रखी है उसको थोड़ी तकलीफ होगी, जनरल लोगों को भी नहीं होगी इसके उठाने से। इतना ही है, वो उसमें से खींच ले, हम उतने क्षणों के लिए अपना ममत्व उसमें से खींच लेना वापस जो हमने उसमें डाला था। चीजों में हम अपना ममत्व डाल देते हैं, फिर चीजें हमारी हो जाती हैं और फिर उनका होना हमें सुख देता है और नहीं होना उन्हें दुख देता है। ये सुख और दुख हम अपने आप से ही पाते हैं, चीजों ईजों से नहीं पाते हैं। चीजें भली बुरी नहीं होती, चीजों को भला बुरा हम अपने भीतर मान बैठते हैं और ये जो हमारी अपनी मान्यता है वो हमें दुख देती, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। देखो, इतनी सी बात समझने में कई जिंदगियां लग जाएंगी, एक मिनट में समझ में नहीं आने वाली। हाँ, कई जिंदगियां। एक बहुत बड़ा आदमी था रईस, और वो चाहता था कि मुझे सुख मिले और शांति मिले, और वो सुख शांति के लिए खोजने निकला। देखना मजा, जो चीज मेरे पास है वो मैं कहीं और खोजूं तो मिलेगी क्या? लेकिन हम सबकी तो कोशिश यही होती है कि मिल जाएगी, शायद उस दुकान पे मिल जाएगी। सुनते हैं कि जब से वो एक कार खरीद के लाए हैं बड़े सुखी हैं, मैं भी ले आऊं एक ठो, मुझे भी सुख मिल जाएगा। सुख इस तरह मिलता होता खरीद फरोख से तो शायद अभी तक सबको मिल गया होता। और वो निकला, क्या लेके निकला सुख शांति खोजने के लिए? देखो तो क्या लेके निकला, कीमती कीमती, जिनको कि वो कीमती मानता था, उन जैम स्टोन्स को, सोने चांदी को एक पोटली में भर करके सुख शांति खोजने निकला। देखो, ऐसे ही तो हम निकल रहे हैं सुख शांति खोजने, नहीं निकल रहे हैं। टैली करते जाएं अपन, टैली करते जाएं दोनों को, फिर देखें कि कहां गड़बड़ है, क्योंकि सीधी गड़बड़ समझ में नहीं आती किसी को भी, अपनी गलती एकदम समझ में नहीं आती। इन रेफरेंस टू अदर, हां, दूसरे के संदर्भ में थोड़ी समझ में आने लगती है। अब क्या हुआ, वो सबसे पूछता है, कहीं तुम्हें शांति मिली, कहीं तुम्हें सुख मिला, देखा तुमने? सब गांव वालों ने कहा कि हमने तो कहीं नहीं देखा शांति और कहीं नहीं देखा सुख, हमने भी बहुत खोजा। तुम आगे जाओ, आगे वाले गांव वालों से पूछो, आगे वाले गांव वालों से पूछा, काय को 10-25 गांव के चक्कर लगा लिए हार हूर करके और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। उसने पेड़ के नीचे जाकर के देखा कि अरे एक बाबा जी यहां पर पहले से बैठे हुए हैं, बड़े शांत दिख रहे हैं, चुपचाप। बाबा जी, आपने कहीं शांति देखी क्या, सुख देखा क्या? बाबा जी समझ गए कि चाहता तो है लेकिन गड़बड़ में है, भूला हुआ है, पोटली हाथ में लिए है। बाबा जी ने आओ देखा ना ताओ, न प्रश्न का जिया जवाब, और छीन ली पोटली और भागे। अब ये पीछे पीछे, अब क्या करें? भागते भागते पूरे गांव का चक्कर लगा दिया बाबा जी ने, और ये चिल्लाता जा रहा है कि चोर है, चोर है, मेरी सॉरी कीमती
हीरे जवाहरात की पोटली चुरा करके भागा है। सारे गांव के लोग उसके पीछे। बाबा जी को क्या करना था, बाबा जी को थोड़ी चाहिए थी पोटली, पर वो बताना चाह रहे थे कि सुख और शांति तुम्हारे भीतर है, तुम समझ नहीं रहे हो। और आकर के फिर बैठ गए बाबा जी उसी पेड़ के नीचे, पोटली ज्यों की त्यों रख दी, हाँपी चलने लगी उसको तो, और आकर कहा कि आप मुझे इतना तंग कर रहे हैं, मैं आपसे शांति और सुख के बारे में पूछना चाह रहा था और आप इतनी मुश्किल में मुझे डाल दिया, इतना परेशानी में डाल दिया। सारी भीड़ जुड़ गई। बाबा जी ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें परेशानी में डाला? मैंने तो नहीं डाला, मैं तो खुद चक्कर लगा रहा था, तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे थे? तुम मेरे पीछे क्यों? आप मेरी पोटली लेके गए थे, इसका मतलब है कि तुम अपनी पोटली के लिए घूम रहे थे ना। हाँ, मैं अपनी पोटली, तो परेशान किसने किया? पोटली ने या कि मैंने? अब समझ में आया कि हाँ, परेशानी मुझे पोटली की वजह से थी। बाबा जी अगर घूमते रहते, चक्कर लगाते, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाबा जी मेरी पोटली लेके गए। तो कौन सी चीज है जो मुझे सुख और दुख पहुंचाती है, ये मालूम पड़ जाए तो सुख और दुख दोनों के बीच में कैसे शांत रहा जाता है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये भर समझने की चीज है कि मेरे सुख और दुख का कारण मेरा ममत्व है। जिस चीज में मैं अपना ममत्व आरोपित कर देता हूं, उस चीज के होने पर मुझे सुख होता है और उस चीज के अभाव में मुझे दुख होने लगता है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मुझे दोनों में अगर समता रखनी है तो यह अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह शाम दो दो घड़ी बैठ करके मैं इस चीज का अभ्यास करना शुरू करूं, मेरी कोई चीज नहीं है इतनी देर के लिए। जितनी देर के लिए मैं अभ्यास कर रहा हूं, उतनी देर तो सही। चाबी जो लगा के आए थे वो एक तरफ उठा के रख दी है। इस 48 मिनट में जो चीज जहां रखी है, मेरा उसमें कोई ममत्व नहीं। कोई उठा के ले जाए तो ले जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने सारे परिग्रह का, सारे ममत्व का त्याग कर दिया। क्या ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते थोड़ी थोड़ी देर के लिए? करना चाहिए, थोड़ी देर सही, फिर तो बाकी अपना है ही सब। कौन छोड़ देगा, एकदम छोड़ देगा क्या? पर 48 मिनट छोड़ने का मजा तो ले ले, कैसा लगता है? कुछ भी नहीं है मान लो मेरा, सपोज करो ऐसा, जैसे बच्चे गणित में मान लेते हैं कि मान लो कि इतना पैसा है, ठीक इसी तरह ये स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। और जिन्होंने अभ्यास किया है वे जानते हैं कि हां, इसमें आनंद आता है। और दूसरी चीज जो मैंने कही थी कि जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, तब उस चीज के होने में किस तरह हमारा अहंकार बढ़ना शुरू होता है, हमारे दुख का एक कारण वो भी है। जो व्यक्ति जितना अहम शून्य होगा, वो उतना जल्दी समता को प्राप्त कर लेगा, उतना जल्दी शांति और सुख को हासिल कर लेगा। और जिसके भीतर जितना ईगो होगा, वो उतना ज्यादा सुख और दुख दोनों को महसूस करेगा। प्लेजर और पेन उनको सबसे ज्यादा होता है जिसका अहम जितना अधिक है। कैसे? समझने के लिए, अगर हमने ये मान लिया है कि हम एक ऑफिसर हैं, तब फिर हमारे घर में एक ऑफिसर की हैसियत से सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर वे चीजें नहीं हैं, तब फिर क्या होगा? दुख होगा, जरूर होगा। मैं एक ऑफिसर, इतना बड़ा ऑफिसर, और मेरे पास में न गीजर है, न मेरे पास हीटर है, न मेरे पास कूलर है, न मेरे पास कलर टेलीविजन है। अब तो और भी बहुत सारी चीजें आ गई होंगी, ये तो मैं बहुत पुराना बता रहा हूं, शायद ना 95-90 के आसपास की बात। अब तो और कोई चीज बता देना भाई मुझे, नई चीज अगर कोई आई हो तो मुझे पता नहीं लग पाता है, और भी इससे बढ़िया चीज हो सकती है, ये नहीं है। अब चूंकि मैं ऑफिसर हूं, वैसे मेरे पास इन चीजों के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों को इन चीजों के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं अपने साथ ये लेबल लगा लेता हूं कि मैं ऑफिसर हूं, सामायिक के क्षणों में हमें इस बात को भी भूलना पड़ेगा कि मैं किस पद पर हूं। हां सामायिक के क्षणों में, पूजा के क्षणों में मैं ऑफिसर हूं या कि मैं लेमैन हूं, बोथ आर द सेम। पूजा के क्षणों में ना कोई धनवान होता है ना ज्ञानवान होता है, और ना कोई ऑफिसर होता है ना कोई स्टूडेंट होता है, सिर्फ भक्त होता है। ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो पूजा भी ऐसे करते हैं भगवान की जाकर के, और जब कोई बाजू से निकलता है तो उसको हिराकत की नजर से देखते हैं कि तुम क्या समझते हो, चांदी के बर्तनों में कर रहे हैं, देखे तक नहीं होंगे, देखे तक नहीं होंगे, देखना मजा। अपन अपना एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप ऐसे नहीं समझ, मैं कोई प्रवचन वचन नहीं कर रहा हूं, प्रवचन तो बड़े लोग करते हैं, अपन तो सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। देखना कैसे अपने को एनालाइज करके देखें। उन क्षणों में भी हम अपने अहम शून्य नहीं कर पाते अपने को, इसलिए तो समता नहीं आ पाती। सारे प्रयोग समता के हैं, चाहे पूजा का हो, चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे सामायिक का प्रयोग हो, सारे प्रयोग उस समता को हासिल करने के थे। लेकिन जब तक ये फीलिंग हमारे अंदर बनी हुई, पहले तो चीजों के प्रति ममत्व बना था, और अब अपने को कोई एक लेबल बना लगा करके हमने मान लिया है हम क्या हैं। हमारा ओरिजिनल फेस हम नहीं देखते हैं, डुप्लीकेट फेस लगा लेते हैं। मैं साहब हूं तो साहब का फेस लगा लें, मैं धनवान हूं तो धनवान का एक फेस लगा लें, एक मुखौटा, और फिर धनवान बने। हम मंदिर में भी आते हैं तो धनवान बने ही आ जाते हैं, हम वो बाहर नहीं उतार पाते, जहां जूते चप्पल उतारे थे वहां हम उतार के रखाएं। ज्ञानवान है तो सारा ज्ञान वहां पर उतार करके रखाएं। तेरे करीब आना आसान न था, तेरे करीब आना आसान न था, जब सरहदी अक्ल से गुजरे तब आए हैं यहां। वैसे तो भगवान तुम्हारे निकट आना बहुत आसान नहीं था, सरहदी अक्ल से गुजरे हैं, जब सारी बुद्धिमत्ता सारा ज्ञान व्यान एक तरफ रख करके आए हैं तब साक्षात्कार हुआ है। बुद्धि भी भगवान से मिलने में या कि आत्म ज्ञान पाने में बाधक बनती है, बाकी सब चीजें तो बनती है। धन भी बाधक बनता है, और हमारे जितने भी स्टेटस के कहना चाहिए हमारे सिंबॉल हैं, वो सब स्टेटस सिंबॉल्स भी सब बाधक बनते हैं। और आज हम सबसे ज्यादा स्टेटस सिंबॉल के पीछे पड़े हुए हैं। इवन हमारा बेटा अगर कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो हमारा स्टेटस बढ़ गया। अब कहां से आएगी समता, कौन सी समता अमता की बात कर रहे हैं आप, संभव ही नहीं है। जो हमारा स्टेटस इन छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ है, जो हमारा सुख दुख इन छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ है, तो हम अपने सुख दुख के बीच में समता कैसे रख पाएंगे। जब ये चीजें मिल जाती हैं तो हम अहंकार कर लेते हैं कि देखा मेरे पास क्या क्या है, और जब ये चीजें नहीं मिलती हैं तो बड़ी तकलीफ पाते हैं। और आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि इन चीजों के मिल जाने और इन चीजों के नहीं होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, तुम ज्यों के त्यों रहे आते हो। जब ये चीजें नहीं थी तब भी तुम्हारी सांस ऐसे ही चलती थी, और जब ये चीजें नहीं रहेंगी तब भी तुम्हारी सांसें ऐसे ही चलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, लगता ऐसा है कि अगर ये चीज नहीं होगी तो सांस रुक जाएगी। जैसे कि बच्चों की कहानी नहीं होती थी कि तोते में है राजा के प्राण, अब अपने प्राण कहां है, तिजोरी में। वो कहानी के दिन लद गए, वो दिन लद गए जब हुआ करती थी कि हाँ तोते में प्राण थे, और फिर तो वो एक जादूगर आया और उस बच्चों की कहानी में उस तोते की टांग उसने ऐसी मरोड़ी तो राजा की टांग टूटने लगी, फिर तोते की गर्दन को ऐसे दबाए तो राजा के प्राण निकलने लगे। ऐसे ही तो अपन के भी साथ है, वो जरा कहानी वाला किस्सा था और ये वास्तविकता है। ये ममत्व और अहंकार, ये दोनों चीजें हमारे समता को नहीं होने देती हैं। हमें इन दोनों की तासीर समझनी चाहिए और इन दोनों से बचना चाहिए। क्या हुआ एक बार, एक छोटे से गांव में एक राजा पहुंचा, अचानक भटक गया था। छोटे लोग भटक करके बड़े लोगों के पास पहुंच जाते हैं अचानक, कभी कोई बड़े लोग भी भटक करके छोटे लोगों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन देखना मजा, बड़े लोग छोटों के पास पहुंच जाएं तब भी उन्हें प्यार मिलता है, लेकिन छोटे लोग बड़ों के पास पहुंच जाएं उनको सिर्फ तिरस्कार मिलता है। देखो तो कैसा हमारा अपना जीवन, इतनी भी हम समता नहीं रख पाते छोटी छोटी चीजों में। पहुंच गए वो राजा साहब की बहुत आवभगत हुई। वो छोटा सा तो व्यक्ति था, एक दूध की दुकान थी उसकी। राजा साहब ने दूध मांगा तो उसको एक गिलास दूध पीने दिया। अब राजा साहब तो राजा साहब हैं, बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, वो हर चीज की कीमत आंकते हैं, है ना। तो राजा साहब ने कहा कितना कीमत हुई तुम्हारे इस एक गिलास दूध की। तो अब जब कीमत ही पूछ ली है राजा साहब ने, वैसे तो फ्री में पिला देते, राजा साहब आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है एक गिलास दूध में, लेकिन अगर ये अपना अहंकार बता रहे हैं तो हम भी कोई गए बीते नहीं है। हां, अगर इनको अपने पैसे का गरूर है तो उसने कहा 100 रुपीज। तो राजा ने कहा मिलकर वेरी रेयर इन दिस प्लेस, बहुत महंगा है, बहुत बहुत दुर्लभ है क्या। तो मालूम उसने क्या कहा, मिलकर नॉट वेरी रेयर, किंग्स आर वेरी रेयर इन दिस प्लेस, मिल्क तो यहां पर बहुत इजी दिया है, लेकिन आप जैसे राजा यहां पर आए ये बहुत रेयर है। ये क्या चीज है, ये हमारे अपने अहंकार को हम किस तरह से पोषित करते हैं और किस तरह अपने लिए दुख और सुख अपने हाथ से निर्मित करते हैं। इतना सा ही उदाहरण है, मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, ये बहुत पुरानी किसी बुक में, और अभी उसी को खोल के पढ़ रहा था तो मैं खुद ही सोच में पड़ गया कि अरे इस तरह की चीजें भी हमारे जीवन में कहां से आ गई हैं। आ गई हैं सब हमारे जीवन में, कहीं किसी और के जीवन में देखने मिलती हैं तो लगता है मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में भी वे सारी चीजें हैं, ऐसा मान करके अगर हम इन चीजों को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करें, और कोई जरूरी नहीं है कि हम इन चीजों को महत्व दें। इन चीजों को हमने महत्व देकर अपने लिए कितनी मुश्किल पैदा कर ली है, ये हम थोड़ा सा विचार करें। चीजें हमारे पास रहें, हम नहीं कह रहे हैं कि चीजें हटा दें, लेकिन चीजों का सदुपयोग करें, उन्हें महत्व ना दें। उन्हें जब हम बहुत अधिक महत्व दे देते हैं तो वे चीजें दुखदाई हो जाती हैं। चीजों का महत्व इतना ही है कि वे हमारे काम आवें, इससे ज्यादा और नहीं है। तो जितनी भी चीजें सम लोट कंचनों, यही तो आचार्यों ने लिखा कि पत्थर और सोने में दोनों में हम समता कैसे रखें। पत्थर हम बाहर फेंक देते हैं, सोना रख लेते हैं, कोई बात नहीं रख लो, लेकिन उसे इतना महत्व मत दो कि अपनी सांसों से भी ज्यादा महत्व दे दें, या कि अपने जीवन से भी ज्यादा महत्व दे दें, ऐसा ना। चीजें हमारे उपयोग के लिए हैं, हम चीजों के लिए नहीं हैं। अगर कुछ क्षणों हम ऐसा अभ्यास करें तो समंतभद्र स्वामी ने भी सामायिक के समय क्या विचार करना चाहिए इसके बारे में लिखा है, अशरण मशो मनित्यम दुख मनात मान माओ सामी भवम मोक्षस तद विपरीतम एति ध्यायन तु सामयिक। दो घड़ी सुबह शाम बैठकर हम इस बात का अभ्यास करें, समता का अभ्यास करें, और संसार के बारे में और अपनी मुक्ति के बारे में, दोनों के बारे में विचार करें। कैसा है संसार, अशरण अशुभ अनित्यम दुख मनात माव सामी भवम, पांच विशेषताएं हैं इस संसार की, जिसमें से अपन ने अभी एक ही समझी है, अशुभ। अशरण अशुभ अनित्यम दुखम अनात्मानम, पांच चीजें होगी। और मोक्ष तद विपरीतात्, मोक्ष इससे बिल्कुल उल्टा है। एति ध्यायन्तु स्यामयिके, ऐसा हम उन क्षणों में अभ्यास करें इस बात का। अभी तक हमें इस बात का अभ्यास है कि संसार सुखमय है, अभी तक हमें ऐसा विश्वास है कि संसार शाश्वत है, ऐसा हमें विश्वास है कि संसार में सब कुछ शुभ है, लेकिन अशरण अशुभ अनित्यम दुखम अनात्मानम,
यह मेरी आत्मा से बिल्कुल पृथक चीजें हैं, ऐसा निरंतर अभ्यास करें। हमने तो सिर्फ विचार किया है, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और ऐसा यदि हम अभ्यास करें तो कोई वजह नहीं है कि हम इन चीजों को ठीक ठीक समझकर इनका सदुपयोग करेंगे, इनसे हमें सुख दुख मिलना उतनी ही कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। छोटी छोटी से और उदाहरण समझ लें। अपनी किताब अपन खरीद के लाते हैं, बढ़िया संभाल के रखते हैं, है ना, कवर अवर लगा के रखते हैं, और दूसरे की लेके आते हैं तो वो दूसरे की। ऐसा ही क्यों नहीं हम हर चीज को दूसरे की है ऐसा मान लें, तो ज्यादा वक्त हमारा उसमें, या फिर सब चीजों को अपनी है ऐसा मान लें। ये दो चीजों में से एक, दोनों में से एक कर दें, या तो सब मेरी हैं तो फिर संभालो, सबको संभालो, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये मेरी है, ये पराई, और ये जो अपने पराए का क्रम है वो सारे दिन हमसे चिपका हुआ रहता है। सारे दिन अगर पूरे दिन को एनालाइज करें तो ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया। ओरिजिनल अपना क्या है वो नहीं, इन चीजों को लेकर के अपना पराया। और सारे सुख दुख का एक ही कारण, अपने पराये का भाव। और अगर हम उस क्षण सामायिक क्षण में इस बात का अभ्यास करें कि कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, तो हम इस क्षमता का अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। संसार अशुभ है, इसके मायने यही है कि उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है, अपने पराये के खेल में हम उलझ के रह जाते हैं, और अंततः हमारे हाथ एक मुसीबत ही आती है। इसलिए संसार अशुभ है। अभी अपन ने सिर्फ एक ही बात पर विचार किया है, आचार्यों ने तो संसार के बारे में पांच बातें कही हैं, विचार करेंगे धीरे धीरे। अशुभ को और थोड़ा सा समझें एक छोटे से उदाहरण से, जैसे कि बहेलिया आता है ना, बहेलिया वो जो पक्षियों को पकड़ता है, वो जाल बिछाता है और जाल के नीचे दाने डाल देता है। पक्षी आते हैं, देखते हैं कि अरे इतने दाने यहाँ पर खाने के किसने फैला दिए, और कोई तो नहीं है यहाँ पर, और ये जल्दी जल्दी चलो फट से खा लेंगे। और जाते हैं और दाना तो खाते हैं, लेकिन पैर धीरे से उस जाल में फंस जाते हैं। अब बताओ इसे क्या कहेंगे, किसी का नाम है अशुभ। जहां भ्रम इस बात का होता है कि मिलेगा सुख, और पाने जाते हैं सुख और मिलता है दुख, इसी का नाम तो है अशुभ। यहां जिस चीज में भी हम सुख की खोज करते हैं वहीं से दुख निकलने लगता है। जिस चीज को हम अपने लिए सुख देने वाली मान लेते हैं, उस चीज के सद्भाव में भी दुख मिलता है, और अभाव में तो मिलता ही। उस चीज के सद्भाव में इसलिए दुख मिलता है कि ये चीज पता नहीं कल के दिन मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई इसे उठा के ना लेगा। वो चीज होते हुए मुझे दुख देती, और जिस दिन नहीं होती उस दिन भी दुख देती, और जब से मैं उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न करता हूं और पा नहीं पाता हूं तब भी मुझे वो दुख देती, तीनों स्थितियों में। इसलिए अशुभ है, हर स्थिति में अशुभ है। ऐसा विचार करना शांत बैठ करके, अपन ने तो इतनी देर किया, अब जाकर के जरूर से अभ्यास करना, और स्वयं इस चीज को फील करें। हम बार बार फील करें इस चीज को कि है तो ऐसा ही, रियलाइज करें कि हाँ है तो ऐसा ही, मैं किसी भ्रम में हूं, मेरा भ्रम टूटना चाहिए। अपने आप को ऐसा सजेशन दें, घड़ी दो घड़ी थोड़ा समय निकालना शुरू करें और इस अभ्यास को करें, और मुझे अगर आप रिजल्ट बताते जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ हमें इसके परिणाम भी मिलना शुरू हो गए हैं। अगर एक व्यक्ति भी ऐसा करेगा तो शायद मुझे भी मदद मिलेगी, मैं और आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता जाऊं, और मुझे लगेगा कि नहीं पर्याप्त है तो फिर अपन किसी दूसरी चीज पर विचार करेंगे। दो तीन दिन और मैं सोचता हूं कि अपन इस चीज पर विचार करें, और उसके साथ साथ आप भी, बहुत दिन से मेरे ख्याल से मैंने इसको 7 और 8 तारीख से शुरू किया था, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ, पर 3-4 दिन पहले के और आज के लगभग 8 दिन हो गए। मुझे आशा है कि आपने थोड़ा बहुत अभ्यास इस चीज का किया होगा, अपने पराये के
भेद से थोड़ी देर को विश्राम लें, अपने ममत्व को थोड़ी देर को शांत करें और अपनी मूर्छा को थोड़ी देर को शांत करने की कोशिश करें। अपने मन वचन काय की जो सक्रियता है उसको थोड़ी देर को शांत करें। मन बहुत घूम रहा है, वाणी को विश्राम दें, शरीर को विश्राम दें। ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग करके रोज देखें और वास्तविकता हमें धीरे धीरे मालूम पड़ने लगे तो हम मानेंगे कि हम सफल हुए हैं। और इसी क्रम से यदि हमने ये सफलता हासिल की तो हमारा जीवन जरूर परिवर्तित होगा, अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा निज दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारक पान किया करते सुख दुख दोनों की कहियों में। भवबंधन तर तर चोट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
है संगत मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी महाराज 108 श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमलों की पूजा अनर्थ पद प्राप्त है अर्घ्य रूपान की स्वाहा।